ओम शांति। बाबा हमें संपूर्ण बनाने आया है, संपन्न बनाने आया है। संपूर्णता किसे कहते हैं? जिसमें बोलो, सब जानते हैं आप, केवल मैं रिपीट करा रहा हूं। संपूर्णता माना सर्वगुण संपन्न। अब आगे बोलो, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तीन में ही आ गए सब, बाकी तो इनसे जुड़े हुए हैं। संपन्न किस में होना है? सर्व खजानों में। खजानों में गुण भी आ जाते हैं। सर्व खजानों में संपन्न और संपूर्ण हमें बनना है। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ सद्गुणों पर। पहले आप सभी चिंतन करें और सद्गुणों की एक लिस्ट बना लें जरा। कुछ गुण ऐसे हैं जो रोज के जीवन में हमारे काम आते हैं। मैं इनको कई भागों में बांट देता हूं। ब्राह्मणों के गुण, देवताओं के गुण, योगियों के गुण हैं, सब मिले जुले। परंतु जैसे योगियों का गुण और लक्षण होगा न्यारा और प्यारा, ये देवताओं का नहीं, ठीक है ना? उपराम स्थिति, ये देवताओं की नहीं। एक और संकल्प करें, इसमें ब्राह्मण और योगियों के तो एक आएंगे, तीसरे जो राजा बनने वाले हैं उनके गुण। माताएं आगे भी आ सकती हैं, कुछ कुछ इधर बैठ सकते हैं। वो हिम्मत करो, हिम्मत मैं दिला देता हूं। बहने हंस रहे, पीछे ही ठीक है अपना। तो जैसे विदेही अवस्था, जैसे नस्तो मोहा, ये किसके गुण हैं? योगियों के। योग की जैसे जैसे ऊंची स्थिति बनती जाएगी, ये गुण जीवन में आते रहेंगे। अब बाकी गुणों की चर्चा करें जो ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर आत्मा को बहुत जरूरी हैं। बोलो, सब जानते हैं आप, कुछ नया कुछ नहीं है, इतना सोचो नहीं। हिम्मत, आज्ञाकारी, बोलो, सरल चित्त। अब बहनों को बोलने दो, हैं? निश्चय बुद्धि, सबको बोलना है। पवित्रता, आपका गुण। धैर्यता, आपका गुण। चलो मैं ऐसे पूछता हूं, बोलो अपना अपना गुण। संतुष्टता, निर्भयता। अब बहने छलक उठी। कोच वाले, सत्यता, सहनशीलता, धैर्यता, बोलते जाओ, हैं? सभ्यता, गंभीरता। बहुत निकाल दिए, भाइयों को आने दो। बचे हो भाई, देखो या तो बोल नहीं रही थी बहने, अच्छा लग गया कलश। बोलो बाकी गुण, एक एक हाथ उठा के बोलेंगे, एक एक। रमणीकता, अंतर्मुखता, सहनशीलता, भाई बोलेंगे। सिंप्लिसिटी, एकाग्रता, नम्रता, गंभीरता आ गया। सहयोग, हर्षित मुक्ता, एक्यूरेसी, और भी बचे हैं कुछ। पवित्रता आ गया है, सरलता, अलकापन, नस्तो मोहा, उदारता, संपूर्णता गुण थोड़े, दृढ़ता, रहमदिल, अथक, और बोलो आगे वाले बहु भाई। शीतलता, वाह देखो ये शीतल रहते हैं, अपना गुण बताया इन्होंने। और अचल डोल, निश्चिंत, ये तो 36 से भी ज्यादा आ गए, और भी बचे हैं कुछ हैं। एकता ये भी है गुण, निर्भयता पीछे वाले हो गए, जो हो गए मैं रिपीट नहीं करूंगा अब। संतुष्टता भी आ गया, सत्यता भी आ गए, केयर फ्री बेफिकर हैं, प्रेम और नहीं, प्रेम और स्नेह तो एक ही बात होती है, प्रेम और एक और क्वालिटी, प्रेम और सुभावनाएं, क्षमाशीलता आ गए सब। तो इतने गुण हैं सबके पास, ये माला है। ज्ञान सरोवर में पीछे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, यहाँ वालों को पता नहीं होगा, हरेक के नाम का एक बैग रखा था इतना, उसमें हरेक को हरेक के लिए गुण लिख के डालने थे, इसमें ये गुण है, तो सबके थैले भर गए थे कागजों से, सब पढ़ पढ़ के बड़े खुश थे। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे अंदर इतने गुण हैं, दूसरों को पता है, बड़ा अच्छा माहौल बना। कई दिन तक वो थैले हॉल में चार ओर रखे रहे थे ऐसे सर्किल में, और सब उसमें दूसरों के गुण लिखते थे। दीदी यहाँ कराया करती, दीदी मनमोहिनी, हमें याद है, ये हॉल भी नहीं बना था, नीचे का हॉल था, 25 थे हम सब, केवल 25 भाइयों का किया था, तो एक को चुनते थे, इसके बारे में सबको एक एक गुण बताना है, तो बाकी 24 उसके बारे में एक एक गुण बताते थे। इसमें घंटे लगे, दो तो लगे, और उसके बाद जो माहौल था कैसा होगा, वंडरफुल, आनंद से भरा हुआ, सबको ये गुड फीलिंग थी कि हमारे अंदर इतने गुण हैं। तो आज हम पहला गुण लेते हैं, सहनशीलता। सब जानते हैं इसके बारे में, कुछ उन बातों की चर्चा करें जो बाबा ने बताई हैं। तुम सहनशीलता की देवी हो, ये याद रखो। हमें ये फील न हो कि हम बहुत सहन करते हैं, समझ रहे ना। सहनशीलता इतनी सरल हो, हमारा ऐसा नेचुरल संस्कार हो कि हमें सहन करना भारी न लगे। सबसे कठिन सहन करना क्या होता है, ठीक बोल रहे बहने बोले, सबसे कठिन सहन करना, खाना कम मिले मनुष्य सहन कर लेता है, लाल मिर्ची न मिले महाराष्ट्र वालों को तो भी सहन कर लेते हैं, अपमान को सहन करना, दूसरों के कटु वचनों को सहन करना सबको सबसे भारी पड़ता है। और ये सहन करना कहाँ मुश्किल हो जाता है, एक दूसरा दुर्गुण जिसे हमें जिसका नाम आपने नहीं लिया, अब उस पर हम आएंगे। आज चार लोग अमेरिका से आए, दो युगल बुजुर्ग, कहा हमारे बच्चों की एक समस्या है, उनकी शादी हो चुकी है, एक की 15 साल पहले हुई और वो दोनों आज तक लड़ते ही आ रहे हैं। मैंने कहा 15 साल में लड़के थके नहीं, कि थके क्या, युद्ध भारी होता जाता है। दूसरे ने कहा 5 साल हो गए मेरे लड़के को शादी किए हुए, दोनों का संघर्ष चलता आ रहा है। क्यों लड़ाई होती है ये, क्यों सहन नहीं करता मनुष्य, ईगो। तो गुण बच गया था, ईगो गुण नहीं, निरहंकारी, निरहंकारी। तो क्या हो गया है आजकल, क्यों झगड़े बढ़ रहे हैं। देखो हमारे भारत में भी पिछले 40 सालों में एजुकेशन बहुत बढ़ी, जो विदेश के भाई बहने बैठे हैं वो जानते होंगे, भारत में भी एजुकेशन बहुत बढ़ी, इस लड़के लड़कियां सब बहुत पढ़ने लगे, बहुत, जो हायर एजुकेशन है उसमें लड़कियां किसी से पीछे नहीं, शादी होती है, दोनों अच्छी नौकरियों में होते हैं, दोनों बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, दोनों बहुत अच्छा कमाते हैं, तो कौन छोटा? समझ गए ना झगड़ों का कारण? कोई भी झुकने को तैयार नहीं, तुम शेर तो मैं सवा शेर। तो एक और एजुकेशन बढ़ी, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा कह सकते हैं जितना शिक्षित मनुष्य आज है उतना उससे पहले कभी नहीं था। देवता तो पढ़ते ही नहीं थे इतना, लेकिन कल द्वापर के बाद भी कलयुग तक इतनी बड़ी एजुकेशन कभी नहीं हुई। बहुत बड़े बड़े इंजीनियर आर्किटेक्ट, लेकिन पुल बनाते ही कितने समय में टूट जाता है, कभी कभी तो बनते बनते ही टूटने लगता है। अभी हम कोई किला देख रहे थे, कहीं नारनौल में गया था ना, तो दिखाया एक किला, उसका नाम था जल महल। बीच में थोड़े से मकान रहने के, बाकी चारों ओर जल ताला बड़े बड़े। देखा हमने पत्थर लगे हुए, मैंने कहा कितना समय हुआ इसको बने हुए, कहा 300 साल, और पत्थर वैसे के वैसे जमे बैठे हैं। मैंने कहा आज इतने इंजीनियर, इतने आर्किटेक्ट और मकान की आयु कितनी होती है? 50 साल में तो हाल बिगड़ जाता है। तो जितनी एजुकेशन बढ़ी उतना अहम बढ़ गया। एजुकेशन ने मनुष्य को विद्यावान नहीं बनाया, डिग्रीवान बना दिया। आजकल तो डिग्री बिकती है, मुझे पता चला पीएचडी की डिग्री 40,000 में मिल रही है, तुम भी ले लो। मैंने कहा हमें तो उससे बड़ी मिल रही है, फ्री में मिल रही है 40,000 में केवल पीएचडी की डिग्री। कहा है तो सबसे सस्ती है, बाकी 1.5 लाख में तो जो चाहे खरीदे, जिस सब्जेक्ट की खरीदे। क्या हाल हो गया एजुकेशन का? तो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन रह गई, समझते हैं इंग्लिश सर, सूचना। विद्या नहीं रही, इसलिए मनुष्य में ईगो बढ़ गया, अहम बढ़ गया, इसलिए सहनशीलता नष्ट हो गई। भारत में भी पिछले 10 सालों में डाइवोर्स के केस, तलाक के केस कोर्ट में भरे पड़े हैं, पहले नहीं होते थे। क्यों? सब पढ़े लिखे, सब कमाने लगे, कोई झुकने को तैयार नहीं। तो क्या 15 साल शादी के बाद यदि परिवार टूट जाए तो शांति रहेगी? उसने कहा, लड़की सोच कहती है मैं तो अपना कमा लूंगी, मुझे किसकी चिंता है। लेकिन क्या कमाना ही जीवन है? बोलो, क्या कमा लेना और बच्चों को पाल लेना, तीन को, यही जीवन है? होगी खुशी जीवन की? डिप्रेशन रहता है, अशांति रहती है, मानसिक तनाव रहता है, समाज की ओर से न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है, असंतोष रहता है, क्रोध बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। ये सब देख सकते हैं चारों ओर आज के युवा वर्ग में। इसलिए सहनशील बनना, जो जितना पढ़े उतना ही विद्यावान बने। समझ रहे ना ये सब? विद्यावान, जिसे सच्चे अर्थों में विद्वान कहते हैं। तो हमारी एजुकेशन ने, हमारी शिक्षा ने मनुष्य को विद्या नहीं दी, और बाबा हमें दे रहा है श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ विद्या, सच्ची एजुकेशन, जो हमें सद्गुण, जिनको आजकल वैल्यूज कहते हैं लोग, मॉरल वैल्यूज, नैतिकता सिखाई जा रही है। तो हम सहनशील बने। कैसे बनेंगे? मैंने कहा, आप सबने भी कहा, सबसे कठिन काम होता है दूसरों के कड़वे वचनों को सहन करना, अपमान सहन करना। सबसे कठिन यही है ना, अपमान सहन करना। अपमान सहन करने के कारण लोग बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी चीजें, संपत्ति छोड़ देते हैं, अपमान जहां है। इसलिए एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है, ये बात मुझे बचपन से बहुत अच्छी लगती थी, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। जो आते ही खुश न हो जाए, आप कहीं गए हैं और वो व्यक्ति आपको देखते ही खुश न हो जाए, नैनों में स्नेह न दिखाई दे, तुलसी ने कहा है, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसत में है, चाहे सोने की बरसात होती हो वहां, वहां नहीं जाना चाहिए। कितना महत्व दिया उसने स्नेह और सम्मान को। सोने की बरसात को छोड़ दो, लेकिन जहां अपमान होता हो वहां न जाओ। बड़ी चीज है ना, हर मनुष्य सम्मान चाहता है, जीव जंतु भी सम्मान चाहते हैं, प्रकृति भी सम्मान चाहती है, हम सबको ये काम करना है, प्रकृति को धन्यवाद देना है। क्या क्या दिया इस प्रकृति ने हमें? पहले तो देह दिया, फिर बोलो माताएं बोलो फटाफट, पानी दिया, फिर कपड़े दिए या नहीं दिए, खाना दिया या नहीं, चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, पानी और हवा। अगर प्रकृति कह दे एक मिनट के लिए हवा रोक देती हूँ, बहुत दी है 5000 साल तुम्हें हवा दी है, ये एक मिनट रहने दो, क्या होगा एक मिनट में? शायद कोई भी न बचे। कितना एहसान है प्रकृति का हम पर, है या नहीं? जिनको देह की बीमारियां रहती हों वो प्रकृति को धन्यवाद दिया करें, प्रकृति से सुख प्रदान करेगी। फोन मेरा बज रहा है किसी और का? मेरा ही है, मैं बंद रखता हूं सभी। तो प्रकृति बहुत कुछ दिया करेगी, ये बात बहुत सूक्ष्म रूप से समझने की है। पानी को भी धन्यवाद दें, पानी नुकसान नहीं करेगा। अन्न दिया है प्रकृति ने, अन्न को धन्यवाद दें प्रकृति को इसके लिए, अन्न हमेशा सुखदायी रहेगा और अन्न बहुत प्राप्त होता रहेगा। इस बात पर सभी बहुत ध्यान देंगे तो हमें सहन इसलिए करना है, माताओं को घरों में बहुत सहन करना पड़ता है। उन माताओं की कहानी सुनो जिनके युगल ज्ञान में नहीं चलते हैं, कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है दोनों ज्ञान में चलते हैं तो सास ससुर सता रहे हैं, कहां जाते हो, सब बिगाड़ दिया तुमने। इधर भगवान भाग्य बना रहा है, उन्हें लगता है सब बिगाड़ दिया है। क्यों सहन करना हमें? क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है, इसे बहुत फायदा मिलेगा। एक यही के भाई का अनुभव है, आज तो नहीं बैठे, मुझे सुनाया, जब बाबा की ये मुरली चली थी ना, सहनशील बनो, तुम्हें इसलिए सहन करना है कि ये परमात्मा आज्ञा है। तो उसका किससे झगड़ा हो गया, दूसरे व्यक्ति ने उसको बहुत कुछ बोला और वो आराम से सहन करता रहा और फिर बहुत खुश था। मैं ऐसे ही क्लास के लिए आया, क्लास के बाद मुझे बताया, मैंने कहा बड़े खुश नजर आ रहे हो कि आज मैंने बाबा की आज्ञा मान ली है। सोचने का तरीका है ना ये, उसको ये कोई गम नहीं था कि दूसरे व्यक्ति ने उसे बहुत बुरा बोला है, उसे ये खुशी थी कि मैंने आज भगवान की आज्ञा का पालन कर दिया। सोच ले आप इस बात पर, ये सच्ची घटना है, यही किया। हम इसलिए सहन करें कि भगवान ने कहा है, हम इसलिए सहन करें कि परमात्म मार्ग पर चलने वालों को सुनना पड़ेगा ही। इसको हम चाहे नियम मान लें या समाज की मर्यादा मान लें, जो सत्मार्ग पे चला, जिसने पवित्रता का मार्ग अपनाया, जो प्रभु प्रेम में मगन हुआ, उसको गाली खानी ही है। खाएंगे या जगह नहीं है पेट में? माताएं बहुतों ने खाई होगी, किस किस ने खाई, हाथ उठाना जरा, देखो छोटे लाल भाई कितनी माताएं हैं, भाइयों में भी खाई किसी ने, कुमार भी तो बहुत खाते हैं, बहुतों ने खाई है, आराम से सहन किया, आराम से किया, क्योंकि प्राप्ति बहुत बड़ी है, गालियां बहुत छोटी हैं, है या नहीं। अगर हम ये सोचें कि जो कुछ हमें सुनना पड़ रहा है वो बहुत छोटा है, पर जो प्राप्ति है जिसके लिए सुन रहे हैं वो बहुत बड़ी है। देखो, लोग अपने बड़े बड़े बिजनेस को संभालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मेरे पास कितनों की कहानी आती है, भाई आते हैं कि हमने 10 साल रात दिन मेहनत की ये काम बढ़ाने के लिए, अब बढ़ गया, अब आनंद है। भूखे रहे, कहीं भी सोए, चार चार पांच पांच दिन, हफ्ता हफ्ता घर से बाहर रहे, भूखे प्यासे, लेकिन मेहनत की 10 साल, अब देखो कितना अच्छा खड़ा हो गया हमारा बिजनेस। हम भी सुन लें, आराम से सुन लें, और उसके बाद आते हैं आनंद के दिन, यहीं आते हैं। सतयुग में आएंगे, लोग सोचते हैं सतयुग कब देखेंगे, पता नहीं, बहुत दिन हो गए, आ रहा है, आता ही नहीं। भगवान भी कह रहा, तुम्हारा राज आया कि आया, बहुत कह लिया, आ ही नहीं रहा। इससे बहुत लोग परेशान होते हैं, लेकिन यही आनंद के दिन आ जाते हैं ना। और आखिर सहनशील व्यक्ति के आगे सबको झुकना भी पड़ता है। एक व्यक्ति आया ज्ञान में, मुझे बताया, मैंने यहाँ पहले भी सुनाया, 22 साल अपनी पत्नी को परेशान करता रहा, बाबा और ब्रह्मा कुमारियों को गालियां देता रहा। 22 साल के बाद उसका भाग्य जग गया, वो ज्ञान में आ गया, मेरे को मिला, बताया कि मैंने तो भाई बड़े पाप कर लिए हैं, बहुत गालियां दी आप सबको, बाबा को भी, और अपनी युगल को तो तंग रखा बहुत। मैंने कहा चलो, ये तो पाप नहीं, ये तो अज्ञान का खेल है ना, बाबा तो इसमें क्षमा दान दे देता है, और बाबा को तो किसी की गालियां पहुंचती नहीं ना, या पहुंचती है, परम नाम तक नहीं जाती गालियों की आवाज, पवित्र जगह है ना, वहाँ केवल पवित्र वाइब्रेशन ही पहुंचते हैं, और कोई चीज वहां तक पहुंचती नहीं है। तो ऐसा सहनशील सबको बनना है। क्या क्या सहन करना पड़ता है, बाबा जब यहाँ आए तो बहुत सबको पक्का करते थे, तुम्हें सर्दी गर्मी भी सहन करनी है, यहाँ सर्दी बहुत होती थी, बरसात बड़ी तूफानी होती थी, सब सहन करना है, तुम्हें हार जीत सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है, जो सहन नहीं कर पाते वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सहनशील भी सरलता के साथ हो, पता न चले हम बहुत सहन कर रहे हैं, जैसा कईयों के मुख से निकलता है क्या, तुम्हें क्या पता हमने कितना सहन किया है, चेहरे से लगता है सहन करके मर गए, बिल्कुल खुशी मर गई है, आनंद समाप्त हो गया, इतना लोगों ने सताया। लेकिन लोग सताना छोड़ देते हैं जब हम आराम से सहन करते हैं, जब हम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो भी कहेंगे ये तो चिकने घड़े हैं, कितनी भी गाली दे लो असर ही नहीं पड़ता इन पे, छोड़ो इन्हें, किसी और को पकड़ो, हो गया नहीं। इसलिए बहुत मस्त रहना है और सहन शक्ति को बढ़ाते चलना है। जिनके पास सहन शक्ति नहीं है वो क्या करे, कहाँ से लेंगे, भक्ति बहन कहाँ से लेंगे सहन शक्ति, मांगेंगे बाबा से, बाबा सहन शक्ति दो, तो बाबा क्या कहेगा, दे दी है यूज करो। और यूज करने का तरीका, रोज सवेरे उठकर कुछ दिन केवल, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सहनशीलता की देवी हूँ, देवता हूँ। सहनशीलता जो हमारे अंदर है, सहन शक्ति, वो इमर्ज हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। ये सहज बात अपना लेनी है। दूसरी बात, अपने विचारों में परिवर्तन लाना है। लोग मुझे क्यों बोलते हैं, मैं इतनी अच्छी फिर भी लोग बोलते रहते हैं, आजकल कई दिन से रोज एक केस मेरे पास ऐसा आता है जिसमें बहनें ये कहती हैं हम कुछ भी गलती नहीं करते फिर भी लोग बोलते ही रहते हैं। ये समस्या बहुतों के साथ आती है। तो मनुष्य ये सोचता है ये क्यों हमें बोलते हैं, सहनशीलता कमजोर पड़ जाती है। या मनुष्य सोचता है हम कब तक सहन करेंगे, क्या ऐसे ही हमारा जीवन गुजर जाएगा सुनते सुनते ही, एक दिन सुना दें अच्छी तरह, क्या करेंगे सुना दें नहीं सुनाएं, सुनते रहें। कहीं कहीं ऐसा होता है एक बार सुना दो सदा के लिए सुनने से मुक्ति, ऐसा भी होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, बात थोड़ी भारी में कर रहा हूँ, कई सोचेंगे ये कैसी बात है, स्वमान में रहकर अपनी स्थिति को संभालते हुए सुना देना चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या लोग सोचते हैं ये कमजोर हैं, इन्होंने जरूर गलती की तब तो चुप रहते हैं। संसार में ये मेंटेलिटी है ना मनुष्य की, इन्होंने जरूर गलती की है तब तो सहन करते रहते हैं चुपचाप। एक बार सुना देना अच्छा होता है, लेकिन मैंने क्या कहा, स्वमान और स्थिति को संभालते हुए, ये नहीं स्थिति बिगाड़ ले, सुना के तो आ जाएं, लेकिन शायद रात सोए नहीं कि मैंने क्यों सुनाया, बाबा क्या कहेगा, फिर परेशानी बढ़ जाए, ये नहीं, अच्छे शब्दों में, खराब शब्दों में भी नहीं, ऐसे शब्दों में नहीं जो हमारा मन खाए कि हमने गलत शब्द बोल दिए, लेकिन रॉयल शब्दों के द्वारा अपनी बात पावरफुल ढंग से कह देने से दूसरा व्यक्ति चुप हो जाता है। और ये कई केसेज में देखा गया कि अगर सुना दिया जाता है तो सुनाने वाला सुनाना छोड़ देता है कि ये भी कुछ है भाई, होता है या नहीं, कईयों को अनुभव होगा ऐसा भी, सुना दिया तो वो चुप हो गए। जैसे कोई बहन रोज सेंटर में जाती क्लास करने, उसका ससुर उसको बार बार बोलता है, कुछ गलत भी बोलता है, लोग जब देखते हैं ना ये नहीं सुन रहे तो चरित्र पर कुछ बोलने लगते हैं। एक दिन वो खड़ी हो गई, जब जा रही थी उसने बोलना जो शुरू किया, उसने उसको एक की जगह 10 सुना दी। अब ससुर जी सोचने लगे ये तो भाई गड़बड़ हो गई, चुपचाप कमरे में चले गए, उसके बाद सुनाना छोड़ दिया, तो मुक्ति हुई या नहीं। कहीं कहीं ये हथियार भी तो अपनाना पड़ता है। या तो हम में बहुत योग बल हो, हमारे वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो कि हमारे वाइब्रेशंस देखकर ही लोग कुछ बोल ही न पाए हमें, होगा नहीं, कोई आपको डांटने आए लेकिन आपके वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हों और आपका चेहरा देखकर डांटना भूल जाए, या तो ये स्थिति हो, अन्यथा एक बार अपनी बात अच्छे ढंग से कह देनी चाहिए। तो हमें सहन शक्ति अपने अंदर भरनी है, मुख्य बात है सहनशीलता से हमारा चरित्र बढ़ता है। इसमें शील शब्द है, सहनशील, शील माना चरित्रवान, और सहन शक्ति बढ़ती है, हम शक्तिशाली हो जाते हैं। अगर क्रोध आ जाता है कहीं भी तो क्या नुकसान होता है, हमारी विवेक शक्ति डिस्टर्ब होती है, हमारे बोल खराब हो जाते हैं, मन का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए सहनशील होना और सहन शक्ति संपन्न होना ये बहुत बड़ी चीज है। ऑफिसों में काम करने वालों को एक कठिनाइयां होती है कि जब लोग देखते हैं ये बहुत सहनशील है, ये बहुत भोला है, तो क्या करते हैं, बहुत सारा काम उन्हें दे देते हैं, तुम लगे रहो, और कुछ कहे तो कहेगा तुम तो ओम शांति वाले हो ना, तो बेचारे और डर जाते हैं कि कहीं बाबा का नाम खराब न हो जाए। दो चार केस मेरे पास आए, बड़े भोले थे वो, कहा क्या करें 12-12 घंटे काम कराते हैं हमसे, तो मैंने कहा तुमको बोलना ही तो नहीं आता ना, इसलिए गड़बड़ हो रही है। हमने उसको कुछ बोलना सिखा दिया, 8 घंटे के बाद उसकी मुक्ति हो गई। तो कहीं कहीं हमारी सहनशीलता का दुरुपयोग लोग करते हैं। इसलिए सहनशीलता के साथ स्वमान का होना आवश्यक है। सहनशीलता के साथ यदि स्वमान है तो वही सहनशीलता हमारी महानता बन जाती है, और सहनशीलता के साथ यदि स्वमान नहीं है तो लोग हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी मानने लगते हैं। इस बात पे सभी को ध्यान देना है। दूसरी धारणा पर हम ध्यान दें, शुभ भावनाएं। सहनशीलता को भिन्न भिन्न फील्ड में भी लिया जा सकता है। बीमारियों को भी सहन करना पड़ता है, दूसरों के दुर्व्यवहार को भी, और किस किस को, माताओं को किसको सहन करना पड़ता है आजकल, बच्चों के स्वभाव संस्कारों को भी सहन करना पड़ता है, पड़ता है, नहीं तो घर में संघर्ष होते हैं। तो सब कुछ सहन करके आगे बढ़ना है, और प्रेम और शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस सबको देने हैं। अकेली शुभ भावनाएं नहीं, शुभ भावना के साथ जुड़ा हो प्रेम, आत्मिक प्रेम। माताओं की अपने बच्चों के लिए बहुत शुभ भावनाएं होती है, लेकिन प्रेम की जगह क्या होता है, बोलो, मोह। इसलिए शुभ भावनाएं प्रभावशाली रूप से काम नहीं करती। सभी जान लें इस बात को, शुभ भावनाओं के साथ यदि आत्मिक प्रेम होगा तो शुभ भावनाएं पूरा प्रभाव दिखाएंगी। नहीं तो माताओं की ये शिकायत होती है, हम बहुत शुभ भावनाएं रखते हैं अपने बच्चों के लिए लेकिन असर नहीं होता, वो सुनते नहीं। माताओं की अपने बच्चों के लिए शुभ भावना तो होगी ही, ऐसी तो कोई मां नहीं संसार में, लेकिन आत्मिक प्रेम से शुभ भावनाओं में बल आ जाता है। इसलिए मोह की जगह ले ले आत्मिक प्रेम, और आत्मिक प्रेम को कैसे बढ़ाएं, बोलो। आत्मा देखने से स्वतः ही आत्मिक प्रेम हो जाएगा, स्वतः ही मोह छूटता जाएगा, आत्मिक प्रेम बढ़ता जाएगा। ये छोटा सा रहस्य सभी ध्यान दें। शुभ भावनाएं, बाबा ने इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य सुनाए हैं। सबसे सुंदर महावाक्य है, तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया हैं। क्यों? तुम पूर्वज हो, इष्ट देव देवियां हो, तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए बहुत बड़ा सहारा हैं, आधार मूर्त हो। तुम्हारी शुभ भावनाओं से तुम शत्रु को मित्र बना सकते हो, तुम्हारी शुभ भावनाओं से दूसरों की ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। अशुभ भावनाओं के विपरीत क्या चलता है मनुष्य के मन में, ये उत्तर भाई देंगे। शुभ भावनाओं के विपरीत बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना, और बोलो दुर्भावनाएं, दूसरों को गिराने की भावना, कोई आगे बढ़ रहा है उसको पीछे करो, आगे तो हमें जाना है, ये कैसे आगे चला गया। संसार में इन्हीं चीजों का बड़ा संघर्ष है। संगठनों में, ब्राह्मण संगठन में भी यही सबसे बड़ी माया है। कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, कोई किसी को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता, केवल मैं आगे बढ़ूं, नाम केवल मेरा हो, दूसरे का क्यों हो गया। दूसरे का नाम सुनते ही खुशी गुम। नीचे सब लोग टीवी पे एक चीज देख रहे थे, किसी ने अनुभव सुनाया बहुत अच्छा, विदेश से कोई युगल आए थे, बड़ा भाई व्यक्ति था वो कोई, तो उसकी युगल ने कह दिया कि हम तो 5 साल से शिवानी बहन का प्रोग्राम देखकर बहुत खुश थे। सामने कुछ लोग बैठे थे, उनका चेहरा देखने वाला था, समझ गए ना? नाम हमारा होना चाहिए, शिवानी का कहां से हो गया? खुशी होनी चाहिए या नहीं, शिवानी का नाम हुआ या बाबा का हुआ? कितने लोग ज्ञान में आए, कितने लोग समीप आए, कितने लोगों के मन में हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति सम्मान बढ़ा, कितने लोगों ने ये महसूस किया कि हमारे पास कितनी अच्छी व्यवहारिक नॉलेज है। तो किसी एक के कारण सबका नाम हुआ ना, तो खुशी होनी चाहिए या नहीं? उसको किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, पता है आपको? उसको किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। किसने बढ़ाया? केवल बाबा ने। तो बाबा जिसको आगे बढ़ाए उसे कोई क्या करेगा? तो हमें दूसरों को आगे बढ़ता देख खुश होना चाहिए और दूसरों को आगे बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जितना हमारे परिवार में योग्य लोग होंगे उतना ही हमारा ये परिवार सारे संसार में शक्तिशाली होगा। अगर हमारे परिवार में योग्य लोग हो ही नहीं, मान लो मधुबन में कोई आ जाते हैं, एक ग्रुप आ जाता है 100 लोगों का, बड़े बड़े लोग आए हैं, और वो कहते हैं भाई अभी किसी को भेजो 1 घंटा बहुत अच्छी कोई क्लास करा दे, और यहाँ परेशान हो जाएं सब, बड़े बड़े प्रोफेसर आए हैं, कौन क्लास कराए, कौन कराए, कौन कराए, और न कोई जाए तो कैसा लगेगा? और हमारे पास पहले ही 10 लोग तैयार हों क्लास कराने वाले, कितना भी अच्छा सेवा का मौका मिले, सब लग जाएं, तो ये किसकी सेवा होगी? होगी या नहीं? तो हमारे परिवार में जितने योग्य लोग होंगे, जितने शक्तिशाली होंगे, टैलेंटेड लोग होंगे, उतना हमारा ये परिवार, हमारा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, बाबा का ये कार्य बहुत स्ट्रांग होगा ना। इसलिए एक दूसरे को सिखाना चाहिए। जिन सेंटरों में एक दूसरे को सिखाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, वहां जो निमित्त बहने हैं वो निश्चिंत रहती हैं, खूब सेवा होती है। और जिन सेवा केंद्रों पर ऐसा नहीं होता, वहां जो निमित्त बहने हैं उनको ही टेंशन रहती है, किचन में भी उनको ही काम देखना है, तो भाषण भी उन्हें करना है, तो क्लास भी उन्हें करानी है, तो मैनेजमेंट भी उन्हें करना है। मैं तो बहुत जगह जाता हूँ ना, कई जगह बहनों ने भोजन बनाने वालों की ऐसी टीम तैयार की हुई है, भोजन उनको सौंपा हुआ, 1000 लोगों का भोजन बन रहा, इनको कोई चिंता नहीं, कितना अच्छा होता है। मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि जिस सेंटर में, सब जोन में भोजन बनाने वालों की टीम अच्छी है, वहाँ बहनें बड़े बड़े प्रोग्राम कर लेती हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं कर सकते, उन्हें रहता है खाना कौन बनाएगा, रखने की भी तैयारी हो जाती है लेकिन खाना कौन बनाएगा, बड़े बड़े प्रोग्राम ही नहीं होते हैं। तो जो दूसरों को आगे बढ़ाते हैं वो स्वयं बहुत सुखी रहते हैं, स्वयं बहुत निश्चिंत रहते हैं। इसलिए हमारी सबके लिए ये शुभ भावनाएं होनी चाहिए, सब आगे बढ़ें, योग्य व्यक्ति आ गए आगे बढ़ें, पढ़े लिखे लोग हमारे पास आ गए उनको आगे बढ़ाया जाए, ये सोचने की जरूरत नहीं ये आगे बढ़ गए तो हमारा क्या होगा। यही संकल्प अनेक जगह टकराव, कष्ट, कमजोरी पैदा कर रहा है। इससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो संगठन है, वो कमजोर बनता है। अगर हमें इसे शक्तिशाली बनाना है तो जिस व्यक्ति में जो योग्यता है उसे यूज करके आगे बढ़ना और बढ़ाना चाहिए। बाबा ने ये करके दिखाया। तब तो बहुत योग्य उस तरह लोग होते भी नहीं थे यज्ञ में, लेकिन बाबा ने एक एक के टैलेंट को, उनकी क्वालिटी को यूज किया और सबको आगे बढ़ाया। तो हम सब भी इस बात पे बहुत ध्यान दें, एक दूसरे के लिए शुभ भावनाएं। हमारी शुभ भावनाएं सबसे पहले हमारे चित्त को निर्मल करती हैं, योगयुक्त होने में बहुत बड़ी मदद करती हैं। सभी इन चीजों पर बहुत ध्यान देंगे, चाहे आप संगठन में हैं, परिवार में हैं, ब्राह्मण परिवार में हैं। शुभ भावनाएं हमारे संगठन के लिए वरदान भी हैं। बाबा ने ये बहुत सिखाया है, जैसे बाबा ने हमारे लिए शुभ भावनाएं रखी, वैसे ही हम भी सबके लिए शुभ भावनाएं रखें। ठीक है, गुण तो बहुत हैं, मैं सोचा था 5-7 पे चर्चा करेंगे, पर आज 2 हुए, बाकी अगली बार। ओम शांति।